सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् सिद्धमनन्तमणिन्द्रिय मणुव मम पत्थसौखमणवज्रम् केवलपहोहणिज्य दुर्नयतिमिरंजिनं नमः।
यह दौला ग्रंथ का स्वाध्याय हमारा चल रहा है। वीरसेन आचार्य ने इसकी रचना की थी, जो मूल षटखंडागम भूतबलि और पुष्पदंत आचार्य ने जो लिखा था धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार, उसकी दौला टीका है। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 27 ऊपर, 27 पेज पर आए थे। हाँ, प्रश्न क्या है आपका? पेज नंबर 13। हाँ, देखो, काल निमित्त कहने वो वर्तमान पर्याय को विषय कर रहा है। जो द्रव्यार्थिक नय है वो किसी पर्याय को विषय नहीं करता। द्रव्य है सच लेना वहाँ, हाँ, अखंड द्रव्य। वहाँ कौन सी पर्याय भूत की है, वर्तमान की, भविष्य की, उसकी कोई चर्चा नहीं है। द्रव्य में, हाँ, एक समय वाली पर्याय, उसको काल निमित्त कहते हैं। क्योंकि हर एक समय 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 करके अलग अलग काल होता है ना उसको। तो अगर हम वर्तमान काल की बात करते हैं तो उसने काल निमित्तक भेद किया द्रव्य में, पर्यायों में, जो पर्यायों का अनादि अनंत क्रम है उसमें से वर्तमान पर्याय वाला द्रव्य लिया, यानी उसमें द्रव्य में भेद डाला। कैसे? काल निमित्तक भेद डाला। द्रव्यार्थिक नय में ऐसा कोई भेद नहीं है। हाँ, काल निमित्तक, हाँ, तब पर्यायार्थिक नय वहां लागू होता है। अब हम 27 पेज पर आए थे, हमने क्या देखा उसकी बात करेंगे। सबसे शुरुआत होती है ग्रंथ लिखने को। आज वो रह गया चार्ट बनाने का, सबके पास जीरोक्स आएगी। आज बोर्ड भी बनाना था, उसके लिए भी टाइम नहीं हुआ। अभी पार्टी पर ही हम समाधान करेंगे। हमने देखा था कि ग्रंथ शुरू होता है तो उसके पहले 6 बातें बताई जाती हैं। वो 6 बातें कौन सी है? तो पहले मंगल करते हैं, फिर ग्रंथ का निमित्त, हेतु, प्रमाण, इन्हें परिमाण कहते उसको, फिर उसका ग्रंथ का नाम और ग्रंथ के कर्ता, ऐसी 6 बातें बताई जाती हैं। ये 6 बातें भी 6-6 प्रकार से उसका वर्णन आता है। पहले वो शब्द कौन से धातु से बना है वो धातु बताया जाता है, क्योंकि जो धातु है ना वर्ब, तो उसका अगर हमको मीनिंग अर्थ पता हो तो फिर उस शब्द का भी अर्थ हमें जल्दी से ग्रहण हो सकता है, पता चलता है, इसलिए धातु बताना है। धातु के बाद निक्षेप, उसके पश्चात नय, नय के पश्चात एक अर्थ उसका, फिर निरुक्त यानी वो शब्द कैसा तैयार हुआ, और अनुयोग। ये बातें हमने यहाँ, हाँ, 10 नंबर पेज पर देखी थी। उसमें से मंगल शब्द के बारे में अपना विवेचन चल रहा है। तो मंगल का धातु मिग धातु है और उसमें निक्षेप कितने लगते हैं, तो 6 निक्षेप लगते हैं। कोई भी शब्द हो, कोई भी किसी भी पदार्थ के बारे में हमको जानना है तो पदार्थ में जो होते हम कल्पना से करते ना, उसमें पदार्थ में, तो पदार्थ में क्षेपित किए जाते हैं, रखे जाते हैं, उसको निक्षेप कहते हैं, और उसको जानने वाले जो ज्ञान की पर्याय है उसको नय कहते हैं। तो निक्षेप 6 प्रकार के है। उसमें पहले नाम निक्षेप, पदार्थ का नाम रखना, वो उसका नाम निक्षेप हुआ। उसके पश्चात स्थापना निक्षेप, पदार्थ में किसी अन्य वस्तु की स्थापना ये वह है ऐसा मान लेना, उसको कहते स्थापना निक्षेप। फिर द्रव्य निक्षेप, क्षेत्र निक्षेप, काल निक्षेप और भाव निक्षेप। इसमें से कल हमने द्रव्य निक्षेप की चर्चा विस्तार से की थी। द्रव्य निक्षेप किसको कहना है? तो द्रव्य में वर्तमान पर्याय छोड़कर अन्य पर्यायों सहित वाला द्रव्य लेना, क्योंकि वर्तमान पर्याय वाला जो द्रव्य है उसको भाव निक्षेप में डालेंगे, ख्याल है ना? हाँ, वो भाव निक्षेप में चला जाएगा। इसलिए यहाँ वर्तमान को छोड़कर अन्य पर्याय ने कौन सी रहेगी, या भूत की या भविष्य की। अब ये जो द्रव्य निक्षेप है वो दो पर गठित करना है, एक तो जीव पर और जिस आधार से जीव रह रहा है उस शरीर पर। तो जीव को कहते हैं आगम द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप के अभी दो भेद हो गए। ये द्रव्य निक्षेप जो है ना मूल, इसके दो मेन भेद करेंगे हम, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। अब आगम द्रव्य निक्षेप किसको कहना? तो जीव को कहना। तो जीव को आगम क्यों कहा? क्योंकि वो जान रहा है ना, जानने वाला है। आगम यानी सर्वज्ञ भगवान का जो उपदेश चला आ रहा है, वो जो हमें ग्रंथों में उपलब्ध है और वो जो वाणी द्वारा बताया जाता है उसको द्रव्य आगम कहते हैं। वो आगम कहते हैं। अभी ये द्रव्य के भाव उसकी बात चर्चा नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि नाम वही होगी तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। तो ये जो ग्रंथ है उसको हम आगम कहते हैं, उसको आगम कहना ये उपचार है। और उस संबंधी जो जीव को ज्ञान है तो वो ज्ञान के कारण जीव को ही आगम कहना ये निश्चय है। तो अभी हमको द्रव्य निक्षेप बताना है। तो द्रव्य निक्षेप में हमारी पहली कंडीशन क्या है? वर्तमान उस पर्याय से युक्त नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमें ऐसा लिया, अभी मंगल संबंधी जो शास्त्र है, आगम में जो मंगल संबंधी को व्याख्यान आता है उसको जानने वाला जीव, परंतु वर्तमान में उसका उपयोग उस शास्त्र ज्ञान में नहीं है, उसका उपयोग अन्य किसी बातों में चला गया है। ऐसा जीव जो है उस जीव को क्या कहेंगे? आगम द्रव्य मंगल। अभी ये लंबे लंबे भी शब्द आएंगे तो घबराने की बात नहीं है। आगम द्रव्य मंगल हो गया ये। अब इस जीव का जो शरीर है वही जीव लेना जो वर्तमान में उसमें उपयुक्त नहीं, यानी उसका उपयोग अन्यत्र है। ऐसे जीव का शरीर है, बाह्य निमित्त है ना उसको, इसलिए उसको नो आगम द्रव्य मंगल कहना। नो आगम द्रव्य मंगल। अब ये नो आगम द्रव्य मंगल यानी यहाँ शरीर वगैरह की बात चल रही है, जीव छोड़कर उसके जो बाह्य निमित्त है उसकी बात चल रही है। तो उसमें फिर तीन भेद करना। पहला कौन सा होगा? न्यायक शरीर। न्यायक शरीर, फिर ये सभी उसके आगे बता देना। न्यायक शरीर ये नौ आगम का भेद है, आगे उसको नौ आगम कहना, और वो द्रव्य मंगल का भेद है तो द्रव्य मंगल कहना। तो कैसा पढ़ना है इसको? न्यायक शरीर, नौ आगम, द्रव्य मंगल। दूसरा भेद है उसका नाम है भावी, तो उसको कहेंगे भावी, नौ आगम, द्रव्य मंगल। और तीसरा भेद है तद व्यतिरिक्त। तद व्यतिरिक्त यानी इनके अलावा, उसका एग्जैक्ट शब्द क्या है? इनके अलावा, यानी इन दोनों के अलावा और भी कोई बात है वो बताएंगे। अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है, तद व्यतिरिक्त की बात अभी हमने की नहीं, बराबर। तो न्यायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। तो ज्ञायक शरीर और भावी में क्या फर्क है? तो ज्ञायक शरीर में वो अभी जानने वाला जीव लिया है और जानने वाले जीव का शरीर लिया। भले जानने वाले जीव का अभी का शरीर हो, पिछले भव का शरीर हो या अगले भव का शरीर हो, ख्याल है ना? ज्ञायक शरीर में ज्ञायक अभी है, अभी वह ज्ञायक है, वर्तमान में ज्ञायक है, उसका उपयोग उसमें नहीं है, परंतु उस जीव का अभी का शरीर। इसलिए ज्ञायक के तीन भेद करेंगे, वर्तमान शरीर, भूत शरीर और भविष्य शरीर, यानी अतीत, वर्तमान और भावी या अनागत, ऐसे तीन भेद यहाँ करेंगे। यहाँ तक समझे ना? यानी ये जीव जानने वाला जीव लिया, ज्ञायक जीव का शरीर, ज्ञायक शरीर, शरीर ज्ञायक नहीं है, जीव अभी जानने वाला है। क्या जान रहा है? मंगल संबंधी शास्त्र की जो प्ररूपणा है उसको जान रहा है। जान रहे ने वो जानने वाला जीव है, वर्तमान में उसका उपयोग उसमें नहीं है, क्योंकि द्रव्य निक्षेप की बात है ना, इसलिए वर्तमान उपयोग की यहाँ चर्चा नहीं। वर्तमान उपयोग वाला वो भाव निक्षेप में डालेंगे, अब यहाँ चर्चा अपनी द्रव्य निक्षेप की चल रही। तो हमने न्यायिक शरीर के तीन, यानी अभी जानने वाला जीव है, उसका भूतकाल का शरीर, उसका वर्तमान का शरीर और उसका भविष्य का शरीर। तो ये इसमें भी भावी शब्द आएगा और यहाँ भी एक भावी शब्द है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो ये वर्तमान में जान रहा है यानी ज्ञायक है अभी, और उसके भूत वर्तमान या भावी शरीरों की बात है। और यहाँ वाला जो दूसरा भेद है ना भावी वाला, वो जीव अभी जान नहीं रहा, वो भविष्य काल में जानेगा उसके शरीर की बात। यानी अभी हम जान नहीं रहे, अभी हम कोई समझो मंगल संबंधी शास्त्र हम जान नहीं रहे और भविष्य में हम जानने वाले हैं, तो अभी इस शरीर को क्या कहेंगे? भावी नो आगम द्रव्य मंगल। अब तद व्यतिरिक्त बाद में करेंगे, उसमें तद व्यतिरिक्त में कर्म वगैरह को भी लेना है। अब हम ज्ञायक के हमने तीन भेद देखे थे, कौन कौन से? भूत, वर्तमान और भावी। तो जो भूत शरीर, भूत यानी पहले भव को जो छोड़कर आया है जीव, उस शरीर की बात है। तो ये भूत, जो भूत ज्ञायक जो ऐसा हम कहेंगे इसको, उसके फिर तीन भेद देखो। ज्ञायक शरीर के तीन भेद, भूत, वर्तमान और भावी। भूत के तीन भेद, अभी ये कौन से शरीर, किस तरह से उसको मरण आया था? तो च्युत, चावित और त्यक्त। ये च्युत, चावित और त्यक्त, त्यक्त, त्यक्त यानी छोड़ा हुआ, त्याग किया है उसने। च्युत यानी छूट गया, कैसे छूट गया? आयु पूरी हो गई और मरण आ गया, इसको कहते हैं च्युत। चावित यानी उसको छोड़ना पड़ा, क्यों? कदलीघात से मरण हुआ। कदलीघात में विषम भक्षण है, एक्सीडेंट है, रक्तस्राव है और जो कुछ अन्य अन्य जो पीछे संक्लेश परिणाम, संक्लेश यानी अति भय या अति क्रोध, देखते हैं ना हार्ट अटैक आया, क्यों आया? वो संक्लेश परिणाम हुए कुछ, गुस्सा है, कुछ भी है, तो ये चावित तो हुआ कदलीघात से मरण। इसमें कदलीघात नहीं है, इसमें कदलीघात है। और आगे वाला जो त्यक्त शरीर है, तो त्यक्त इन्हें वो संलेखना पूर्वक छोड़ा है। तो उसमें के तीन भेद, संलेखना मरण के तीन भेद कैसे? प्रायोपगमन यानी उसमें ना स्वयं स्वयं का कुछ उपकार करता है, ना पर से कोई उपकार यानी निमित्त रूप से लेता है, पर से निमित्त यानी वो संस्कार करना या उठना बैठना, उसमें भी अन्य मुनि उनकी जो सेवा करते हैं, जैसे पैर दबाना या कुछ उठने के लिए मदद करना, जो कुछ है वो तो ना अन्य से लेते हैं, ना स्वयं ही उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, कुछ नहीं करते। जिस पोजीशन में, जिस आसन में उन्होंने स्वीकार किया है, काष्ठ जैसे निश्चल होकर रहते हैं, मलमूत्र विसर्जन आदि कुछ नहीं हुआ, बस प्रायोपगमन यानी उसी अवस्था में उसका देह त्याग हो जाता है, तो उसको कहते हैं प्रायोपगमन, यानी आहार वगैरह सबका त्याग है वहाँ। तो प्रायोपगमन कोई, वो भी त्यक्त वाला एक भेद है। दूसरा भेद है इंगिनी मरण। इंगिनी मरण यानी स्वयं स्वयं का तो करते हैं, परंतु दूसरे का उपकार नहीं ले, दूसरे से वैयावृत्ति नहीं कराते, परंतु स्वयं उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं या जो कुछ उनका जो रूटीन जो है, परंतु वे भी आहार का वगैरह त्याग कर देते हैं पूरा, यावत जीवन इन्हें आमरण तक त्याग होता है उनका। तीसरा जो है उसको कहते हैं भक्त प्रत्याख्यान। तो भक्त प्रत्याख्यान यानी क्या है? वो स्वयं से भी और दूसरे के भी वहाँ से वैयावृत्ति वगैरह की वहाँ उपकार कराते हैं, कराते हैं ना, वो एक्सेप्ट करते हैं उसको, और उसमें क्रम क्रम से आहार पानी इत्यादि का त्याग होता है। उसमें जघन्य में जघन्य अंतर मुहूर्त का भी हो सकता है। भक्त ने भोजन, भोजन का भी त्याग है ना वहाँ, तो अंतर मुहूर्त का हो सकता है, या कोई मध्यम बहुत भेद है, और उत्कृष्ट में उत्कृष्ट 12 साल की, जिसको हम कहते वो संलेखना ले ली उन्होंने 12 साल की, बड़ी से बड़ी। तो इस तरह से इसके हमने भेद देखे थे। एक कहां से लिया? द्रव्य मंगल की बात चल रही थी। द्रव्य मंगल में आगम द्रव्य मंगल जीव को कहा, नो आगम द्रव्य मंगल शरीर को कहा। नो आगम द्रव्य मंगल में पहले ज्ञायक शरीर वाला लिया। ज्ञायक शरीर में भूत भविष्य वर्तमान वाला। भूत में किस तरह से वो छोड़ा है तो उसके लिए चुत चावित और त्यक्त। चुत यानी आयु कर्म खत्म हुआ मरा, चावित यानी कदली घास से मरा, और त्यक्त यानी वो संलेखना पूर्वक से समाधि मरण जिसको कहते हैं। उसमें तीन वेद, प्रायोपगमन, इंगिनिमरण और भक्त प्रत्याख्यान। भक्त प्रत्याख्यान में भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद से तीन भेद है। क्या यानी यहाँ शरीर को ही वो द्रव्य मंगल कह दिया। अभी दूसरा भेद जो है यहाँ ऊपर से नौ आगम द्रव्य मंगल के ज्ञायक वाला पहला भेद, उसकी हमने चर्चा की विस्तार से। अब यहाँ वाला जो भावी नौ आगम, यहाँ कौन सा था? भावी ज्ञायक शरीर नौ आगम था और ये भावी नौ आगम है। ज्ञायक शरीर वाला एक भावी का भेद था, यानी वर्तमान में वो जानने वाला जीव है और उसका भविष्य का शरीर है। और यहाँ डायरेक्ट भावी जो भेद है उसमें वर्तमान में वो जीव नहीं जान रहा है, वो जीव आगे चलकर भविष्य में जानेगा। देखो, एक ज्ञायक शरीर यानी अभी वो शास्त्र का जानकार है। अब ऐसे जीव का जो भविष्य में जो शरीर धारण करेगा उसकी बात है यहाँ, यानी इस भव में वो जान रहा है और भविष्य काल में जो शरीर धारण करेगा, मान लो अभी देव में गया तो उसको कहेंगे भावी न्यायक शरीर नो आगम द्रव्य मंगल। अब यहाँ वाला एक भावी नाम का जो भेद है, नो आगम का डायरेक्ट भावी भेद, उसमें क्या है? वो जीव अभी वर्तमान में शास्त्र का जानकार नहीं है, परंतु भविष्य में जाकर वो जानने वाला है, अगले भव में वो जानने वाला है, तो उसके शरीर को ये हम भावी नो आगम कहेंगे। ख्याल है ना? ज्ञायक यानी वर्तमान में जानने वाला है, उपयोग से रहित है और वर्तमान में जान रहा है, और भावी में वर्तमान में नहीं जान रहा है ये जीव डेफिनेटली, क्योंकि कोई अवधि ज्ञानी मुनि केवल ज्ञानी के ज्ञान में है ना कि ये जीव जानने वाला है भविष्य में, तो उस अपेक्षा ये भावी का भेद किया हम। अभी इसका चार्ट बनाएंगे हम। ज्ञायक शरीर अभी शास्त्र का जानकार है, वर्तमान में उसमें उपयोग नहीं है। वर्तमान में उपयोग नहीं है हमने ऊपर ही निश्चित किया था, बराबर। द्रव्य निक्षेप में ही वो वर्तमान में बिना उपयोग वाला लेना है, ऐसे जीव का शरीर लेना ज्ञायक शरीर में। हाँ, भविष्य ने अगले भव में ऐसा लेना हुआ, अगले भव की बात करना। वैसे तो सभी भविष्य में हो सकता है, अभी निगोदम का कोई जीव है और भविष्य काल में जानेगा तो द्रव्य की अपेक्षा लेना है हम। वो निगोद पर्याय को अगर कंसिडर मन में है तो निगोद पर्याय अगर अपने बुद्धि में चल रही है तो वो द्रव्य निक्षेप नहीं होगा, वही जीव द्रव्य लेना है। तो जब जीव द्रव्य कहेंगे, द्रव्य निक्षेप कहेंगे, तो उसमें ये निगोद का है या मुनि का है क्या वर्तमान में गृहस्थ का, ये तो भेद ही अपने ख्याल में नहीं आते, वो द्रव्य निक्षेप हो जाएगा। तो वैसे तो सभी द्रव्य मंगल हो गए, जीवो मंगल आगे बात आएगी। जीव को ही मंगल कहा है, सभी जीव मंगल है, वो कैसे क्या उसकी बात आएगी आगे। तो यहां तक समझे ना, ज्ञायक शरीर नो आगम के हमने भेद देखे। अब ये जो भावी वाला है उसकी अभी चर्चा करेंगे, और तद व्यतिरिक्त क्या है, उसमें किसको लेना, उसकी भी बात करेंगे। हम 27 पेज पर आए थे। वो अभी आएंगे। कल हमने भावी का भेद पढ़ा था, फिर उसको पढ़ते हैं। भावी क्या है उसको पढ़ा था, अभी उसको पढ़कर फिर तद व्यतिरिक्त भेद में चले जाएंगे। ये जो नीचे विशेषार्थ लिया ना लिखा, उसके ऊपर की दो लाइन, जो जीव भविष्य काल में मंगल शास्त्र का जानने वाला होगा। अभी बाकी ज्ञायक शरीर में हमने क्या लिया, जो वर्तमान में जानने वाला है। अब यहाँ उपयोग तो है ही नहीं है, जानने वाला है परंतु उपयोग से रहित है, और जो भविष्य में जानेगा उसके तो उपयोग का सवाल ही नहीं आता है, वो तो भविष्य काल में ही उसको जानेगा। तो जो जीव भविष्य काल में मंगल शास्त्र का जानने वाला होगा, यानी वो अगले भव की बात नहीं, अभी इसी भव में भविष्य काल में जानने वाला है, ऐसा भी ले सकते हैं। अभी तो नहीं जान रहा है, 10 साल बाद जानने वाला होगा, तो उसको भी उसमें लेना, नो आगम वाले में। नहीं समझे? हाँ नहीं नहीं उसको नहीं लेंगे यहाँ, देखो। हाँ कहाँ से लेना, अभी तो हम इतना ही ले लेंगे कि अभी वो जीव का जो वर्तमान का शरीर है वो जीव कुछ काल बाद जानेगा। अभी अगले भव की बात की कि नहीं की उसकी बात यहाँ पढ़ेंगे। देखो जो जीव भविष्य काल में मंगल शास्त्र का जानने वाला होगा अथवा मंगल पर्याय से परिणत होगा उसे, उस जीव को कहा। भव्य नौ आगम द्रव्य मंगल निक्षेप कहते हैं। पहले ज्ञायक शरीर को कहा, अब नौ आगम क्यों कहा, वो शास्त्र का जानकार नहीं इसलिए उसको नौ आगम कहा। देखो ये डिफरेंस है, आप पहले निकाल लेना। ज्ञायक शरीर की व्याख्या हमने क्या देखी थी, ये शरीरों में घटित किया था ज्ञायक शरीर वाला। पेज नंबर 22 पर नौ आगम द्रव्य मंगल तीन प्रकार का लिखा है ना, दूसरा पैराग्राफ। बाह्य निमित्त है ज्ञायक शरीर वाला लिया, तो पहला है ज्ञायक शरीर, यानी शरीर इसमें लिया है। भावी भेद में उसको शरीर को नहीं लिया है, खाली भावी लिखा है। और तीसरा है तद व्यतिरिक्त, यानी जो शरीर की बात है वो मात्र ज्ञायक शरीर में ले लेना। अब देखो नौ आगम द्रव्य मंगल निकालना पहले उसकी। यहाँ लिया 21 पेज पर, देखो द्रव्य मंगल के पहले ही पैराग्राफ में, पहले नहीं तीसरे में अंतिम लाइन, द्रव्य मंगल आगम और नौ आगम के भेद से दो प्रकार का है, बराबर। अब आगम उसके आगे क्या लिखा है, आगम से भिन्न पदार्थ को नौ आगम कहते हैं, बराबर। नहीं ऐसा नहीं लेना, वहां जीव शास्त्र का जानकार है तब उसको आगम कहना, उस द्रव्य को आगम कहना, और जीव शास्त्र का जानकार नहीं होगा तो उसको नो आगम कहेंगे। देखो पहले में पहले जानने वाले जीव को आगम द्रव्य मंगल कहा, उसकी तो वहा उसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं अपने में। अब अगले पेज पर कसमें गैक नो, हाँ वही अभी अभी पढ़ रहे, उसका अभी हमने पढ़ा नहीं है, उसकी बात अभी होने जा रही है। ज्ञायक शरीर की बात की, ज्ञायक शरीर जो है जीव का शरीर लिया, जीव के शरीर में वर्तमान भूत और भविष्य का लिया, वो तो सभी शरीरों की बात हो गई उसके। तो ये नौ आगम द्रव्य मंगल तीन प्रकार का, सेकंड पैराग्राफ 22 पेज पर, उसमें ज्ञायक शरीर, भव्य या भावी और तद व्यतिरिक्त लिया। भव्य ने होने योग्य है ना, वो ज्ञायक शरीर ने अभी जान रहा है, ज्ञायक का शरीर, वो जीव ज्ञायक है अभी। भावी में या भव्य में वो ज्ञायक नहीं, अभी वो भविष्य में जानने वाला है, वो जीव भविष्य में जानने वाला है। देखो 23 पेज पर आगम के बाह्य सहकारी कारण होने से शरीर को नो आगम कहा गया है, वो ज्ञायक शरीर की बात है। तो उसमें बताया अतीत, वर्तमान और अनागत तीनों शरीरों में घटित होता है, ये भी बात पढ़ ली हमने। फिर वो हमने वो सब डिटेल देखे भूत शरीर के कैसे कैसे होते हैं। अब उसके बाद अभी हम आ रहे हैं ज्ञायक शरीर के तीन भेद। हाँ देखो, अब हम पेज नंबर 27 पर आते हैं। अब जो जीव भविष्यकाल में मंगल शास्त्र का जानने वाला होगा अथवा मंगल पर्याय से परिणत होगा उसे, अब यहाँ शरीर की बात नहीं की है क्योंकि वो जीव का द्रव्य लेना है, जीव द्रव्य लेना है, द्रव्य मंगल में जीव द्रव्य की बात है, उसको नो आगम क्यों कहा, वो शास्त्र को जान नहीं रहा है, अभी शास्त्र का जानने वाला नहीं है इसलिए उसको नो आगम कहा। शास्त्र का जानने वाला होगा तो उसको हमने आगम में लिया, शास्त्र का जानने वाला नहीं इसलिए उसको नो आगम में डाला, परंतु वो भविष्य में जानने वाला होने वाला है, दैट इज डेफिनेट, इसलिए उसको नो आगम द्रव्य मंगल कहेंगे। हाँ, शरीर भी आया, उस जीव का शरीर, अकेला पुद्गल द्रव्य नहीं कहना। तो यहाँ वो निगोद की बात, उसकी कोई चर्चा नहीं होगी, जीव को लेना है, वह जीव द्रव्य लेना है। देखो अभी इसका विशेषार्थ करते हैं। ज्ञायक शरीर के तीन भेद किए हैं जो अभी हमने कल बहुत विस्तार से देखे, भूत, वर्तमान और भविष्य। उसका एक भेद भावी भी है, यानी ज्ञायक के भावी शरीर को भी भावी ज्ञायक कहा था, भावी ज्ञायक शरीर लिया था उसने, परंतु उससे इस भावी को भिन्न समझना चाहिए क्योंकि ये नो आगम वाला डायरेक्ट एक भावी वाला भेद है। नो आगम के तीन भेद, ज्ञायक शरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त। भावी कहो या उसको भव्य कहो तो ज्यादा अपने को दोनों का डिफरेंस ख्याल में आया। ज्ञायक शरीर का एक भावी ज्ञायक शरीर वाला भेद था, और ये जो भेद है नो आगम का डायरेक्ट भेद जो भव्य है, तो ये भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि ज्ञायक शरीर के भावी विकल्प में ज्ञाता के आगे होने वाले शरीर को ग्रहण किया है, और यहाँ पर भविष्य में होने वाला तद्विषय शास्त्र का ज्ञाता ग्रहण किया, ये ख्याल में आए ना। ज्ञायक शरीर में शरीर को ग्रहण किया और यहाँ जीव को लिया जो भविष्य में जानने वाला है। आप अश्विन में प्रश्न पूछते जाना, हमारा क्लियर होता है ज्यादा ऐसी, ये तो चर्चा है ना, स्वाध्याय है। हाँ देखो इसको हम फिर रिपीट करेंगे। हमने क्या देखा, ज्ञायक शरीर के तीन भेद देखे थे, भूत में जो शरीर धारण, अभी जो ज्ञायक जीव है, अभी जो ज्ञाता है, मंगल शास्त्र का जानने वाला है, उसके भूतकाल के शरीर को भूत ज्ञायक शरीर कहा, उसी जीव के वर्तमान शरीर को वर्तमान ज्ञायक शरीर कहा, और उस वो जीव भविष्यकाल में जो शरीर धारण करेगा उसको भावी ज्ञायक शरीर कहा, बराबर। ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य मंगल, ऐसा पूरा नाम। हाँ भावी, हाँ तो अभी उस भावी का पूरा नाम क्या होगा, जैसे हम बच्चे का नाम, फिर उसके बाप का नाम, फिर उसका सरनेम सब बताते ना। हाँ तो भावी ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य मंगल। अब जो हम भव्य या भावी का भेद देखने जा रहे हैं उसका नाम क्या होगा, भावी नो आगम द्रव्य मंगल। यहाँ वाला जो भावी है या भव्य है वो ज्ञाता ही लेना, जीव लेना, कौन, जो भविष्य में ज्ञाता बनने वाला है, ज्ञाता है ना, मंगल शास्त्र का ज्ञाता बनने वाला है, ऐसा जीव। ज्ञायक शरीर में जो ज्ञाता है अभी, उसके शरीर की बात थी ज्ञायक शरीर में, और यहाँ नो आगम क्यों कहा फिर? उस जीव को नो आगम क्यों कहा? वो आगम का जानने वाला नहीं है, इसलिए उसी को नो आगम कहा। आगम को जानने वाला परंतु वर्तमान उपयोग से रहित, ऐसे जीव को आगम द्रव्य मंगल कहेंगे, बराबर। और वर्तमान में भी नहीं जान रहा है, वो भविष्य में ही वो जानेगा, फिर भी जीव का द्रव्य, जीव द्रव्य तो वही का वही रहने वाला है, इसलिए द्रव्य निक्षेप में इसी को तो हम कहते द्रव्य निक्षेप, कि भूत और भावी पर्याय वाला। हमने वो यात्रा का उदाहरण दिया था, लिखा था, कहाँ गए? यात्रा में गए। अरे अभी तो घर में है या क्लॉक कर रहे हैं, तो वो भविष्य काल की पर्याय सहित, परंतु वो द्रव्य वही का वही है, इसलिए उसको हम, वो द्रव्य वही है इसलिए द्रव्य मंगल कहेंगे उसको। तो ये वाला जो भव्य या भावी है, वो जीव भविष्य काल में जाकर वो ज्ञाता बनने वाला है, उस जीव को यहाँ द्रव्य मंगल कहा है। ज्ञायक शरीर में शरीर को द्रव्य मंगल कहा था, नो आगम के ही भेद है। आगम में जीव को ही लिया, नो आगम में भी जीव को भी लिया है, शरीर को भी लिया है, और ये दोनों के अलावा और तीसरा भी लिया है। यानी ये क्लियरिटी अभी हुई, नो आगम के तीन भेद, ज्ञायक शरीर में शरीर को लिया, भावी में जीव को लिया, और तद व्यतिरिक्त जीव और शरीर से भिन्न तीसरा ही कोई ले गए, उसकी बात करेंगे अभी, ख्याल है ना? तद व्यतिरिक्त है ना, इनके अलावा, अभी इनके अलावा कौन है उसकी बात अब करेंगे। ये विशेषार्थ मैं फिर पढ़ रही हूँ। ज्ञायक शरीर के तीन भेद है, उसका एक भेद भावी भी है, परंतु उससे इस भावी को भिन्न समझना चाहिए, क्योंकि इस भावी में जीव द्रव्य को लिया है, जो आगे जाकर जानने वाला होगा, बराबर। क्योंकि ज्ञायक शरीर के भावी विकल्प, विकल्प है ना भेद, ज्ञायक शरीर का जो एक हमने भूत भावी भविष्य वाला जो एक भेद देखा था भावी वाला, उसमें ज्ञाता के आगे होने वाले शरीर को ग्रहण किया है। यानी वर्तमान कोई जानने वाला जीव है और भविष्य में वो देव का शरीर धारण करेगा, तो उसको भी हम भावी ज्ञायक शरीर कहेंगे। और यहाँ पर यानी ये जो डायरेक्ट भेद है ना भव्य वाला, उसमें भविष्य में होने वाला तद विषयक शास्त्र का ज्ञाता ग्रहण किया है, यहाँ शरीर की बात ही नहीं की, यानी वो निगोद वगैरह की चर्चा यहाँ आएगी ही नहीं। अश्विन भाई, आपने पूछा था ना निगोद शरीर को भी हम उसमें लेना है, हाँ नहीं नहीं, यहाँ शरीर को लेना है, जीव को ही लेना है, यानी वो निगोद वाले जीव द्रव्य को आप ले सकते हैं, उसके शरीर की बात नहीं है। अब तद व्यतिरिक्त वाला तीसरा भेद, नो आगम का जो डायरेक्ट भेद है तीसरा, हमने द्रव्य मंगल का दो भेद किए थे, आगम और नो आगम। नो आगम के तीन भेद किए थे, ज्ञायक, भावी और तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक की बात हुई, भावी की अभी हमने की, और ये तद व्यतिरिक्त यानी इनके अलावा और क्या है कि जिसको हम नो आगम द्रव्य मंगल कहेंगे, उसकी बात अब बता रहे हैं। तो उसमें तद व्यतिरिक्त में कर्म और नो कर्म, ऐसे दो भेद करना। आपने कल बात की थी शरीर को लिया, कर्म को लेना के नहीं लेना, तो अभी वो कर्म को भी लेंगे, कौन से? वो तीर्थंकर नाम कर्म, क्योंकि वो मंगल रूप परिणत हो गए ना, उसमें वो निमित्त रूप से वो तीर्थंकर नाम कर्म भी होगा। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय में वो दिव्य ध्वनि खिलेगी वगैरह, वो जो बातें होगी। देखो, कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल, एक्चुअली इसके आगे नो आगम एक बीच में शब्द आ जाएगा, हाँ ये उन्होंने डाला नहीं है, परंतु वो है ऐसा हम समझ लेते हैं, क्योंकि नो आगम द्रव्य मंगल के भेद चल रही है। नो आगम द्रव्य मंगल के तीन भेद, पहला न्यायक शरीर, दूसरा भव्य या भावी, और तीसरा तद व्यतिरिक्त। अब ये तद व्यतिरिक्त के दो भेद, एक कर्म तद व्यतिरिक्त और दूसरा नो कर्म तद व्यतिरिक्त। यानी तद व्यतिरिक्त के आगे नो आगम ये शब्द है ही, ऐसा समझना यहाँ। उसके भेद से तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल दो प्रकार का है, अगर डाला ना उन्होंने शब्द तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल, उसमें दर्शन विशुद्धि आदि 16 प्रकार के तीर्थंकर नाम कर्म के कारणों से जीव के प्रदेशों से बंधे हुए तीर्थंकर नाम कर्म को, यहाँ कर्म को कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल कहते हैं, क्योंकि वह मंगलपने का सहकारी कारण है। सहकारी कारण यानी वहाँ उपस्थिति है ना, उसकी तीर्थंकर के जीव में तीर्थंकर नाम कर्म का उदय वहाँ उपस्थित है, इसलिए उस कर्म को भी द्रव्य मंगल कहा। कौन सा वाला, वो पूरा लंबा नाम लेना पड़ेगा, कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं ना, वैसे ये बार बार बोलेंगे तो ये अपनी जीव अपने मेंटल यानी बुद्धि में भी वो कसरत हो जाती है। देखो अभी कर्म की बात तो आसान है, तीर्थंकर नाम कर्म को कहा है, अब नो कर्म में किसको लेना। तो देखो, नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल दो प्रकार का है। एक तो लौकिक नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल, और दूसरा लोकोत्तर नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल। ये पूरा नाम नहीं लेना है तो हमने द्रव्य मंगल के आगम और नो आगम भेद किए थे। नो आगम के हमने गायक शरीर भावी और तद व्यतिरिक्त देखे थे, तद व्यतिरिक्त के दो कर्म और नो कर्म, नो कर्म के दो भेद लौकिक और लोकोत्तर। अलौकिक है मगर ये लोकोत्तर कहा ना यहाँ। अभी वहां उन्होंने डेफिनेट बात की है, हाँ अलौकिक ही है, जैसे अलौकिक संख्या मान कहते हम, वहां ये लोकोत्तर लेना इसमें। शब्द तो हम वही यूज करना है जो आगम में लिखे हैं, ख्याल है। तो ये वाला अभी लौकिक कौन सा है, मंगल, कि लौकिक में जिसको मंगल कहते हैं फिर भी क्यों कहते हैं उसका भी कारण बताते हैं। ऊपर की हम गाथा पहले पढ़ेंगे, सिद्धत्त पुण्य कुंभो वंदन मालाय मंगलम छत्तम सेदो वर्णो आदन सणोय कन्नाय जच्चसो। यह शब्द होगा मेरे ख्याल से यह आदन सणोय कन्नाय जच्चसो। उसमें है ना, यह है ना, हाँ यहाँ प्रिंट बराबर नहीं हुआ है इसमें, हाँ उनके भी किताब में है, पुराने में छपा है बराबर। आदंसनों के आगे यह शब्द है, वो अस्पष्ट है उसमें, हाँ देखो अब ये लौकिक मंगल की बात करेंगे। ये जो लौकिक मंगल है उसके तीन वेद, एक सचित्त अचित्त और मिश्र। इसमें सिद्धार्थ अर्थात श्वेत सरसों, संस्कृत में या प्राकृत में उसको सिद्धार्थ कहते हैं, श्वेत सरसों के लिए सिद्धार्थ शब्द है। सरसों यानी वो राई, सफेद राई, उसको सिद्धार्थ कहते हैं। हमारी तो काली या लाल जैसी आती है ना, ये सफेद वाली है। जल से भरा हुआ कलश, कुंभ लिखा ना, कुंभ पुण्य कुंभ, खाली कुंभ ने पुण्य ने पूर्ण कुंभ, वंदनमाला छत्र श्वेत वर्ण और दर्पण आदि अचित्त मंगल है। इसको क्यों मंगल कहा है उसकी बात आगे विशेषार्थ में लिखी है, तभी से पढ़ेंगे हम। ऊपर है ना सिद्धंत सिद्धत्व ने श्वेत सरसों, पुण्य कुंभ ने पूर्ण जल से भरा हुआ कलश, वंदन माला, फिर छत्र छत्तम यानी छत्र, सेदो यानी श्वेत वर्ण सेदो वन्नो, आदंसनो यानी दर्पण, और आगे कन्या लिखा है उसका अर्थ थे बाल कन्या, वो सचित्त में चला जाएगा, सचित्त मंगल में बाल कन्या, और जच्चस्व यानी उच्च प्रकार का अश्व यानी उत्तम जाति का घोड़ा आदि सचित्त मंगल है। अभी सचित्ता चित्ते ने मिश्र वाला लेना है तो अलंकार सहित कन्या आदि मिश्र मंगल समझना चाहिए। यहाँ पर अलंकार अचित्त और कन्या सचित्त होने के कारण अलंकार सहित कन्या को मिश्र मंगल कहा है। अब ये इन जो अचित्त पदार्थ है उनको मंगल क्यों कहा, ये लौकिक मंगल की बात हो रही है तो उनको मंगल क्यों कहा ये विशेषार्थ में बताते हैं। अभी पंचासिकाय की टीका में भी जयसेन आचार्य ने इन पदार्थों को मंगल रूप मानने में भिन्न भिन्न कारण दिए हैं। वे इस प्रकार है, यानी वो जयसेन आचार्य की टीका से उन्होंने ये लिया है, यही टीका नीचे उन्होंने प्राकृत में लिखी है, वो आप पढ़ सकते हैं बाद में, उसी का ये भाषांतर है। वे इस प्रकार है, जिनेन्द्र देव ने व्रतादिक के द्वारा परमार्थ को प्राप्त किया और उन्हें सिद्ध यह संज्ञा प्राप्त हुई, यानी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर मोक्ष प्रकट किया और सिद्ध हुए, तो सिद्ध नाम हुआ, तो लौकिक में जिसका सिद्ध नाम है उसको भी हम मंगल मान लेते। तो श्वेत सरसों यानी सफेद राई जो कुछ होगा सरसों, उसको सिद्धार्थ के नाम है उसका सिद्धार्थ, तो इसलिए वो सिद्धार्थ को भी मंगल मान लिया, क्योंकि हम सिद्ध भगवान मंगल है, इसलिए जिसका नाम सिद्धार्थ है उसको भी हमने लौकिक में मंगल मान लिया, दूसरा उसमें कोई कारण नहीं है, सिमिलैरिटी वो नाम में सिमिलैरिटी है इसलिए उसको भी मान लिया। वो नाम मंगल, ये उसमें नाम मंगल में भी नहीं आएगा किसी भी, उसमें तो नाम में कोई अपेक्षा नहीं होती ना, वो सिद्धार्थ जो नाम है वो नाम निक्षेप से है। यानी वो नो आगम द्रव्य मंगल नहीं कहेंगे उसको, है ना? ये लोक में सिद्धार्थ तथा श्वेत सरसों मंगल रूप माने गए हैं। अभी दूसरा जो पूर्ण कुंभ है उसको क्यों मंगल मानते हैं? तो जिनेन्द्र देव संपूर्ण मनोरथों से अथवा केवल ज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए पूर्ण कलश मंगल रूप से प्रसिद्ध हुआ। ये कलश स्थापना वगैरह करते हैं ना कोई, मंगल कलश स्थापना पूजा के प्रारंभ है, मंगल कलश लेके वहां स्थापन करते हैं, ये तो लौकिक मंगल है। अब वंदन माला की बात है, बाहर निकलते समय अथवा प्रवेश करते समय 24 ही तीर्थंकर वंदना करने योग्य है, इसलिए भरत चक्रवर्ती ने वंदन माला की स्थापना की। अब ये वंदन माला क्या है मुझे भी मालूम नहीं है, ये शायद रचना होगी स्तुति की या कोई ऐसी माला होगी, पता नहीं, जैसे हम 108 वो नवकार माला है वैसे ये होगी कोई। अब उसके बाद क्या है, श्वेत वर्ण है ना, छत्र अरिहंत परमेष्ठी सभी जीवों का कल्याण करने वाले होने से जग के लिए छत्राकार है, यानी हमारे, हम कहते हैं हमारे ऊपर पिताजी का छत्र है या उनकी छत्र छाया में हम हैं, ऐसा कहते हैं बड़े लोगों की हम छत्र छाया में, वैसे अरिहंत हमारे लिए छत्र रूप है, अथवा सिद्ध लोग भी छत्राकार है, ये सिद्ध शिला है वो छत्राकार है, इसलिए छत्र मंगल रूप माना गया है। अब उसके आगे श्वेत वर्ण, ध्यान और शुक्ल लेशा इत्यादि को श्वेत वर्ण की उपमा दी जाती है, यानी शुक्ल ध्यान जो श्रेणी में होता है और शुक्ल लेशा जो लेशाओं में जो अति विशुद्ध लेशा उसको श्वेत लेशा शुक्ल लेशा कहते हैं, तो इसलिए शुक्ल यानी सफेद वर्ण जो है उसको लौकिक में मंगल माना है, इसलिए श्वेत वर्ण मंगल रूप माना गया है। जिनेन्द्र देव के केवल ज्ञान में जिस प्रकार लोक और अलोक प्रतिभासित होता है उसी प्रकार दर्पण में भी अपना बिंब झलकता है, अतएव दर्पण मंगल रूप माना गया है, इसलिए दर्पण को आदर्श कहते हैं ना उसको, आदर्श, आदर्श के दो अर्थ होते हैं, एक आदर्श है हमारे भी आदर्श एडॉल और दूसरा आदर्श है उसका अर्थ होता है प्रति मिरर दर्पण, आदर्श दर्शाने वाला वो आदर्श, इसमें क्या शब्द है ऊपर आदंसनो, ये प्राकृत है उसी का ही संस्कृत है आदर्श, यानी वो दर्शाने वाला यानी दर्पण है, दर्पण को आदर्श कहते हैं। अब आगे जिस प्रकार, अब ये सचित्त मंगल, ये तो अचित्त मंगल देखे हमने, अब कन्या और उत्तम घोड़ा है उस पर घटाते हैं, जिस प्रकार वीतराग सर्वज्ञ देव लोक में मंगल स्वरूप है उसी प्रकार बाल कन्या भी राग भाव से रहित होने के कारण लोक में मंगल मानी गई है, ये बाल कन्या की बात। और जिस प्रकार जिनेन्द्र देव ने कर्म शत्रुओं पर विजय पाई उसी प्रकार उत्तम जाति के घोड़े से भी शत्रु जीते जाते हैं, अतएव उत्तम जाति का घोड़ा मंगल रूप माना गया है। ये लौकिक मंगल है, उसमें कुछ नहीं, यानी उसके वो उसको देखकर हमको सिद्ध भगवान की या शुक्ल ध्यान की या ऐसी ऐसी याद आती है, इसलिए उसको भी मंगल माना गया है। अब लोकोत्तर मंगल ये हुए ना, सचित्त अचित्त हुए, और ये कन्या वस्त्र अलंकार सहित है इसलिए उसको मिश्र कहा। लोकोत्तर मंगल की अभी बात करेंगे, वो भी सचित्त अचित्त और मिश्र के भेद से तीन प्रकार का है। अरहंत आदि का अनादि और अनंत स्वरूप जीव द्रव्य सचित्त लोकोत्तर नो आगम तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, अरिहंत भगवान का द्रव्य लिया है, परंतु वो वर्तमान में केवल ज्ञान आदि वाला नहीं लेना है, नो आगम में डालना है ना उसको। आगे लिखा देखो, यहाँ पर केवल ज्ञान आदि मंगल पर्यायुक्त अरिहंत आदि का ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु उनके सामान्य जीव द्रव्य का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान सहित द्रव्य को, वर्तमान पर्याय सहित द्रव्य को भाव कहा है, इसलिए उसका भाव निक्षेप में अंतर्भाव होगा। अरिहंत पर्याय सहित यानी केवल ज्ञान सहित वाले जो अरिहंत अवस्था वाला जो है उनका जीव द्रव्य, उसको भाव निक्षेप में डालेंगे, भाव मंगल कहेंगे। अभी हमारी द्रव्य मंगल की परिभाषा चल रही है, तो जो आगे चलकर अरिहंत होने वाले है वो जीव द्रव्य लिया, उसको हम द्रव्य मंगल कहेंगे। उसकी द्रव्य निक्षेप में गणना नहीं हो सकती। उसी प्रकार केवल ज्ञान आदि पर्यायों का भी इस लोकोत्तर नो आगम द्रव्य मंगल में ग्रहण नहीं होता, यानी उन पर्यायों को भी नहीं, और उस पर्याय से परिणमत वो जीव द्रव्य उसको भी यहाँ नहीं लेना है, क्योंकि वे सब पर्याय वो ये अलग टाइप का लिखा है, यह को कहना चाहिए, भाव स्वरूप होने के कारण उनका भी भाव निक्षेप में ही अंतर्भाव होगा। ये क्या कहना चाहते हैं, अरिहंत भगवान का द्रव्य लेना, जैसे अभी श्रेणिक राजा का जो जीव है अभी नरक में है, परंतु वो जीव द्रव्य आगे अरिहंत होने वाला है, तो उस जीव द्रव्य को हम ये नो आगम द्रव्य निक्षेप वाला नो आगम द्रव्य मंगल में ले सकते, यानी लोकोत्तर तद व्यतिरिक्त, नहीं उसके बीच में एक लगे रहे ना, नो कर्म तद व्यतिरिक्त रह गया, लोकोत्तर नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल। अनादि अनंत लिया वहां, परंतु अभी वर्तमान में केवल ज्ञान आदि मंगल पर्याय सहित, यानी वो अरिहंत, यानी पूरा द्रव्य लिया अपन, वर्तमान का नहीं लेना, अरिहंत की अपेक्षा लिया। अरिहंत ये वर्तमान अवस्था है, सिद्ध उनकी भविष्य की अवस्था है, तो अरहंत को हम यहाँ द्रव्य मंगल ये भाव मंगल में ले लेंगे, और बाकी पूरा वो अनादि अनंत जो द्रव्य है एक्सेप्ट वर्तमान पर्याय, वर्तमान की एक समय की पर्याय छोड़ देना उनकी, वो द्रव्य पूरा लेना, वो द्रव्य मंगल में आएगा। अनंत अरहंत आदि में मुनि भी लिए ना हमने, अब ये सचित्त हुआ, सचित्त लोकोत्तर हुआ, अभी लोकोत्तर का एक भेद अचित्त भी है। तो कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालयादि अचित्त लोकोत्तर नो आगम तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल है। किसको लिया यहाँ, चैत्यालय को, कृत्रिम चैत्यालय और अकृत्रिम चैत्यालय, ये दादर मंदिर है उसको यहाँ लेना, तो मंदिर में जो भगवान विराजमान है उनको लेना कि नहीं लेना, वो उनको तो स्थापना निक्षेप में चली जाएगी प्रतिमा। उन चैत्यालयों में स्थित प्रतिमाओं का इस निक्षेप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका स्थापना निक्षेप में अंतर्भाव होता है, ख्याल है ना अभी है? हाँ, प्रतिमाओं को हमने स्थापना निक्षेप में लिया और मंदिर को लिया यहाँ लोकोत्तर द्रव्य मंगल में। शंका पूछते हैं, अकृत्रिम प्रतिमाओं में स्थापना का व्यवहार कैसे संभव है, उसमें स्थापना निक्षेप कौन करने गया था? वो तो अनादि से चली आ रही ना, कृत्रिम किसको कहते, किसी ने बनाया नहीं है। तो उसका समाधान, इस प्रकार शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि अकृत्रिम प्रतिमाओं में भी बुद्धि द्वारा प्रतिनिधित्व मान लेने पर ये जिनेन्द्र देव है, इस प्रकार के मुख्य व्यवहार की उपलब्धि होती है। वहाँ भी जब हम अकृत्रिम का स्वरूप सुनते हैं या अकृत्रिम चैत्यालय या मूर्ति वहाँ देखेंगे, तो वहाँ ये जिनेन्द्र भगवान है ऐसा हम अपने बुद्धि के द्वारा स्वीकार करते ना, वहाँ भी तो वहाँ भी स्थापना निक्षेप होता है। अथवा यह दृष्टांत देकर समझाया, अग्नितुल्य बालक को भी जिस प्रकार अग्नि कहा जाता है, कोई तेजस्वी बालक है ना, हम कहते हैं तेजस्वी है हा? तो उसको ये संस्कृत में अग्नि कहा जाता था। उसी प्रकार कृत्रिम प्रतिमाओं में की गई स्थापना के समान यह भी स्थापना है, इसलिए अकृत्रिम जैन प्रतिमाओं में स्थापना का व्यवहार हो सकता है। उक्त दोनों प्रकार के सचित्त और अचित्त मंगलों को मिश्र मंगल कहते हैं। ये दोनों को मिलकर जब कहेंगे तो मिश्र मंगल होगा। अब यहां तक हमने द्रव्य मंगल की बात पूर्ण कर दी। निक्षेप छह प्रकार के हमने देखे थे, सचित्त और अचित्त। चैत्यालय लिया, मूर्ति स्थापना में आएगी, वो अरिहंत का द्रव्य लेना, जीव द्रव्य लेना, वहां जो वर्तमान में जो उस रूप नहीं है, ऐसा वर्तमान पर्याय की विवक्षा छोड़कर, पूर्व और यानी का ना, अरिहंत आदि का अनादि अनंत स्वरूप जीव द्रव्य, अभी उसमें मुनि भी ले सकते ना, अकृत्रिम चैत्यालय में जो मुनिराज बैठे हैं तो उनको ले लेंगे हम क्यों, हो सकेगा ना? वो चैत्यालय लेना है, मूर्ति तो स्थापना निक्षेप में चली जाएगी। अब ये जीव द्रव्य जो अरिहंत रूप होने वाला है, ऐसा भी अरिहंत कौन से वाले, हाँ यानी मुख्य रूप से, हाँ मुनि ही हो गए, इसीलिए मैंने मुनि को लिया। और वर्तमान में उनकी तो उस पर्याय है ही नहीं है, मुनियों को ही, अच्छा वही वहां तक ही, और श्रावकों को नहीं लेना उसमें। अभी एक क्षेत्र मंगल की बात करेंगे, हमने द्रव्य नाम मंगल देखा, स्थापना मंगल देखा, द्रव्य मंगल देखा, चर्चा की हमने विस्तार से, अब क्षेत्र मंगल की बात करेंगे। गुण परिणत आसन क्षेत्र अर्थात जहां पर योगासन वीरासन इत्यादि अनेक आसनों से तदनुकूल अनेक प्रकार के योग्याभ्यास जितेंद्रियता आदि गुण प्राप्त किए हो, ऐसा क्षेत्र, क्षेत्र मंगल है ना, जिस क्षेत्र में कुछ मंगल पर्याय प्राप्त की है, ऐसा क्षेत्र लेना, यानी जहाँ पर वो मुनिराज ध्यान में बैठे थे या कोई कोई आसन होगा उनका, आसन है ना वीरासन, यानी ऐसे घुटने टेक कर बैठते, वैसे कोई भी पद्मासन हो, कोई भी हो, ऐसा क्षेत्र, यानी वह आसन क्षेत्र लिया उसका। फिर परिनिष्क्रमण क्षेत्र, हाँ परिनिष्क्रमण किसको कहना भाई, हाँ देवेंद्र भाई नहीं मालूम, हाँ हाँ तप कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, परिनिष्क्रमण यानी दीक्षा कल्याणक होता है, तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक होते हैं, तो उस कौन से क्षेत्र में हुआ, उस क्षेत्र को यहाँ लिया है, क्षेत्र मंगल की बात हम कर रहे हैं, वो कल्याणक का काल काल मंगल में ले लेंगे। कल्याणक जिस स्थान पर हुआ है, हम कहते हैं ना ये उनका दीक्षा वृक्ष है, ऐसा कहते हैं, ये उनका केवल ज्ञान का वृक्ष है, ऐसा कहते हैं ना, हाँ तो यहाँ जिस स्थान पर की वो क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कौन से क्षेत्र में वो थे जब वो दीक्षा कहाँ ली थी, तो उसकी बात है यहाँ। फिर केवल ज्ञानोत्पत्ति क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी, वो क्षेत्र, उसको क्षेत्र मंगल कहते हैं। और निर्वाण क्षेत्र, हम तो निर्वाण क्षेत्र वगैरह यात्रा करते हैं ना, समय शिखर है वहाँ, 20 तीर्थंकरों का निर्वाण क्षेत्र है। बाकी आदिनाथ का कहाँ है, कैलाश पर है, फिर कैलाश है, गिरनार है, चंपापुर है, ये जो अन्य जो है हा? महावीर जी यानी पावापुरी जी है, तो ये क्षेत्र मंगल हो गए, निर्वाण क्षेत्र है वे। आदि को क्षेत्र मंगल कहते हैं। आगे उदाहरण देकर इसका खुलासा किया जाता है। तीर्थंकरों का ही मुख्यतः, मुनियों के भी हो सकते हैं, जैसे अभी हम द्रोणागिरी वगैरह में गए थे तो वहां आता है ना गुरुदत्तादि, वहां से निर्वाण हो गए, तो ऐसे उनके भी निर्वाण क्षेत्र होते हैं। हम निर्वाण कांड जो पूजा कहते तो उसमें तो कितने 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 करोड़ों कहाँ कहाँ से मोक्ष गए वो सब उसमें लिस्ट आती है, वो सभी निर्वाण क्षेत्र कहलाए, यानी क्षेत्र मंगल होगा। उर्जयंत यानी गिरनार पर्वत, गिरनार का ही दूसरा नाम है उर्जयंत। चंपापुर और पावापुर नगर आदि क्षेत्र मंगल है। अथवा अब ये ने वहां की भूमि को लिया, यहाँ अभी हम यहाँ बैठे तो आकाश के इन प्रदेशों में बैठे ना, उस आकाश के प्रदेशों को ले लेंगे। क्या लिखा है यहाँ, अथवा 3.5 हाथ से लेकर 525 धनुष तक के शरीर में स्थित और केवल ज्ञानादि से व्याप्त आकाश प्रदेशों को क्षेत्र मंगल कहते हैं। तो ऐसे में तो वो जब केवल ज्ञान से व्याप्त आकाश क्षेत्र यानी जब केवली से मुदात होगा तो पूरा लोकाकाश ही केवल ज्ञान से व्याप्त हो गया है, वो पूरा ही लोकाकाश वो क्षेत्र मंगल हो जाएगा। हाँ हम देखते ना एक एक समय में 20-20 40-40 केवली समुदात हो सकते हैं, हमने देखा था एट अ टाइम। तो सर्वत्र केवल ज्ञान के यानी आत्म प्रदेश सर्वत्र फैल जाते हैं, तो एक क्षेत्र मंगल हो गया, यानी हमको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, निर्वाण क्षेत्र तक। क्या कहते हैं, अथवा लोक प्रमाण आत्म प्रदेशों से लोक पूर्ण समुद्घात दशा में व्याप्त किए गए समस्त लोक के प्रदेशों को क्षेत्र मंगल कहते हैं। अब जिस काल में, काल मंगल बताने वाले, जिस काल में जीव केवल ज्ञान आदि अवस्थाओं को प्राप्त होता है, जैसे हम पंच कल्याणक है, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, कौन से तिथि में हुआ था, उस स्थिति में हम उन भगवान की पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, उसको काल मंगल कहलाते हैं। दिवाली के दिन में हम किसको याद करते हैं, क्यों, निर्वाण हुआ था ना, वो उनका निर्वाण कल्याणक का दिवस था, तो उस दिवस को हम उस दिन याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो ये काल मंगल। जिस काल में जीव केवल ज्ञान आदि अवस्थाओं को प्राप्त होता है उसे पाप रूपी मल का गलाने वाला होने के कारण काल मंगल कहते हैं। उदाहरणार्थ दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान की उत्पत्ति और निर्वाण प्राप्ति के दिवस आदि काल मंगल समझना चाहिए। जिन महिमा संबंधी काल को भी काल मंगल कहते हैं। जिन महिमा यानी जो इंद्रादिक जाते हैं, वो अष्टानिका पर्व मनाते हैं ना, नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, वहाँ की चैत्यालयों की पूजा करते हैं, कृत्रिम चैत्यालयों की, तो उसको अष्टानिका पर्व कहते हैं। तो जिन महिमा की वहाँ महिमा संबंधी वो काल है, तो अष्टानिका पर्व जो है उसको भी काल मंगल कहते हैं। अब ये काल मंगल की बात हुई, क्षेत्र मंगल की अभी हमने देखी, तो अभी कौन सा रह गया, वाह, हमने नाम मंगल देखा, स्थापना मंगल देखा, द्रव्य मंगल देखा, क्षेत्र मंगल देखा, काल मंगल देखा, भी भाव मंगल की बात होगी। द्रव्य मंगल में हमने वर्तमान पर्याय से रहित जीव को लिया, अब यहाँ अकेले वर्तमान पर्याय से सही द्रव्य लेना है, उसको भाव में डालना बस। तो वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहते हैं। वह आगम भाव मंगल और नो आगम भाव मंगल के भेद से दो प्रकार का है। इसमें भी दो बातें की। वो हमने आगम द्रव्य मंगल में क्या लिया था, आगम यानी मंगल शास्त्र का ज्ञातापन वर्तमान में उसमें उपयोग रहित वाला लिया था। अब क्या लेना पड़ेगा, जानने वाला और वर्तमान में उसमें ही उपयोग वाला जीव लेना पड़ेगा भाव मंगल में, ख्याल है ना। तो आगम सिद्धांत को कहते हैं, इसलिए जो मंगल विषयक शास्त्र का ज्ञाता होते हुए वर्तमान में उसमें उपयुक्त है, यानी उसका उपयोग अभी उसमें ही चल रहा है, उसे आगम भाव मंगल कहते हैं। ये आसान हुआ ना अभी, क्योंकि द्रव्य मंगल पर बहुत घटाया था, तो अभी ये तो भाव मंगल आसान हो गया। अब नो आगम भाव मंगल किसको कहना, तो नो आगम भाव मंगल है उसके दो भेद, एक उपयुक्त और एक तत्परिणत, यानी उस रूप परिणत। भेद से दो प्रकार है, जो आगम के बिना ही मंगल के अर्थ में उपयुक्त है उसे उपयुक्त नो आगम भाव मंगल कहते हैं। अब यहाँ जीव की बात है, यहाँ कोई शरीर की बात नहीं है, नो आगम में यहाँ शरीर को लिया ही नहीं है, ख्याल है ना। द्रव्य मंगल में हमने ज्ञायक शरीर को लिया था, अब यहाँ नहीं लिया। यहाँ आगम द्रव्य मंगल में वो मंगल विशेष शास्त्र का ज्ञाता है और उसमें उपयुक्त है, नो आगम में आगम के बिना ही उसके विचार में उपयुक्त है। क्या कहा, आगम के बिना ही मंगल के अर्थ में उपयुक्त है उसे उपयुक्त नो आगम भाव मंगल कहते हैं। और जो मंगल रूप पर्याय अर्थात जिनेन्द्र देव आदि की वंदना भाव स्तुति आदि में परिणत जीव को तत्परिणत नो आगम भाव मंगल कहते हैं। उस रूप परिणत मंगल पर्याय से उस रूप परिणत नो आगम भाव मंगल लिया। अब यहाँ शंका पूछते हैं, इन निक्षेपों में से, यानी हमने छह निक्षेप देखे, तो इन निक्षेपों में से इस ग्रंथावकार रूप प्रकरण में, ग्रंथावतार रूप प्रकरण में किस निक्षेप से प्रयोजन है, यहाँ कौन से निक्षेप का प्रयोजन है, क्या बताने वाले हैं। यहाँ पर तत्परिणत नो आगम भाव मंगल रूप निक्षेप से प्रयोजन है। हाँ, लास्ट अभी जो हमने देखा था उसमें शंका है, यदि यहाँ तत्परिणत नो आगम भाव मंगल रूप निक्षेप से प्रयोजन है तो अन्य निक्षेपों के कथन करने से यहाँ क्या प्रयोजन है। अश्विन भाई का प्रश्न यहाँ पूछ लिया उन्होंने कि इतनी सब कसरत क्यों कराई, कल से वो न्यायिक शरीर और वो तद व्यतिरिक्त और ये और वो सब लफड़ा, अर्थात प्रयोजन के बिना ही उनका यहाँ कथन नहीं करना चाहिए था, ऐसी शंका है। उसका समाधान क्या है, जहाँ जीवादि पदार्थों के विषय में बहुत जाने वहाँ पर नियम से सभी निक्षेपों के द्वारा उन पदार्थों का विचार करना चाहिए, क्योंकि जीव के बारे में हमको सर्वांगीण उसका स्वरूप जानना चाहिए तो सभी निक्षेपों के द्वारा उसको जानना आवश्यक है। श्लोक रह गया ये 14 नंबर का ऊपर,
जत्थ बहुम जानिज्जा अवरिमिदं तत्थ निक्खिवे नियमा जत्थ बहुम न जानदि चौठयम् निक्खिवे तत्थ।
क्या कहते, जहाँ जब बहुत जानना है सभी निक्षेपों से जानो, और जहाँ थोड़ा जानना है वहाँ चार निक्षेप तो लगाओ ही लगाओ। देखो नीचे पढ़ेंगे उसका अर्थ, समाधान है ना। जहाँ जीवादि पदार्थों के विषय में बहुत जाने वहाँ पर नियम से सभी निक्षेपों के द्वारा उन पदार्थों का विचार करना चाहिए। हमने पहले देखा था पदार्थ को जानना है तो प्रमाण नए और निक्षेपों द्वारा उसका विचार करना चाहिए, और जहाँ पर बहुत न जाने तो वहाँ पर चार निक्षेप अवश्य करना चाहिए, अर्थात चार निक्षेपों के द्वारा उस वस्तु का विचार अवश्य करना चाहिए। इस वचन के अनुसार यहाँ पर निक्षेपों का कथन किया गया। पूर्वोक्त कथन के मान लेने पर भी किस प्रयोजन को लेकर निक्षेपों का कथन किया जाता है, इस प्रकार की शंका करने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, कि यहाँ इतना सब लंबा चौड़ा समझाने की क्या जरूरत है। तो कहते हैं श्रोता अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो श्रोता है तो उनको ठीक ज्ञान होना चाहिए, प्रयोजन क्या है, किसी उपदेश का प्रयोजन क्या है, सब जीव भली भांति इसको समझे। तो श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? अव्युत्पन्न, अर्थात वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ, कुछ नहीं जानता है, सुना तो भी उसको कुछ उसमें पता नहीं चलता, उसको कहते हैं अनभिज्ञ, वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ। जैसे उसके लिए कर्मकांड में भी ये विषय हमने पढ़ा था डॉक्टर, तो उसमें उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे चलते हुए किसी पुरुष को पैर में तृण का स्पर्श हुआ, स्पर्श हुआ ये तो भासित हुआ, पर क्या था ये? तृण था कि कागज था कि गीला कपड़ा था कि मिट्टी थी? कुछ नहीं, उसका कोई उसको यानी सामान, उसको ज्ञान तो हुआ पर क्या था इसका ज्ञान नहीं था। जैसे सुन तो लिया शास्त्र में, क्या बातें कर रहे थे कुछ पता नहीं चला, ऐसा था ना? कोई सुनने को हम बहुत किसी को आग्रह करते हैं तो चले आते हैं, क्या एक घंटे भर क्या क्या बातें करते थे क्या पता, ऐसा हो जाता ना उसको, कहते वो अनभिज्ञ वाला श्रोता, पहले प्रकार का श्रोता, यानी उसके ज्ञान में क्या है? अनद्यवसाय है शास्त्रीय शब्द, उसको आगे लेंगे दूसरा प्रकार की श्रोता में। हाँ, अभी है ना, अभी और दूसरे भी बताएंगे। पहला तो टोटल अनभिज्ञ है, सुना मगर क्या सुना, यानी शब्द तो सुने परंतु उसका कुछ भी अर्थ प्रतिभासित नहीं हुआ, ये पहला वाला लिया। दूसरा, संपूर्ण विवक्षित पदार्थ को जानने वाला, विवक्षित यानी जो मैटर अंडर कंसिडरेशन, जो कुछ विवक्षा जिसकी चल रही है, नहीं डिटेल में नहीं, चालू जो विषय है, हम जिस विषय की बात कर रहे हैं उस विषय को जानने वाला, उस विषय को पूरा उसने सुन लिया है, वो उस विषय को पूरा जान लिया उसने। और तीसरा कौन है? अभी इसकी हम चर्चा अधिक करेंगे। और तीसरा, एक देश विवक्षित पदार्थ को जानने वाला, उस पदार्थ संबंधी उसने एक देश जाना है, पार्टली सुना है, एक ने पूरा पुस्तक पढ़ लिया उस विषय का और एक ने थोड़ा पढ़ा है उसके संबंध में, तीनों को निर्णय नहीं है, ऐसा लिया है ना श्रोता? श्रोता तीन प्रकार के यहाँ लिए, पहला तो टोटली अनभिज्ञ है, दूसरा उसने संपूर्ण वो सुन तो लिया है परंतु वो करता क्या है, अपने दिमाग से अर्थ लगाता है, ये ज्यादा डेंजरस है। पहले तो मानता है कि मुझे कुछ नहीं पता चला, ये दूसरा क्या है, पुस्तक वगैरह पढ़ लेता है और अपने बुद्धि से अर्थ लगाता है उसमें। जैसे यहाँ वहां शास्त्र में इसका वर्णन है कि खेत में दूर से उसने पुरुषाकार कुछ देखा है, यानी वह कुछ देखा ऐसा नहीं, पुरुषाकार दिखा है, परंतु उसको अभी शंका है, संदेह है, क्या है, अरे वो माथी का ढेर है या पुरुष है या कोई वृक्ष का वो ठूठा है थड़ क्या है, तो ये उसका निर्णय नहीं है। जाना जरूर है उसने, कैसे जाना, संदेह जाना, संशय है या विपरीत ही जानता है, यानी है तो वहां माटी का ढेर और उसने उसको पुरुष ही समझा, क्या उसने नहीं जाना था? उसने जाना था, उसको नहीं जाना नहीं कहते हम, जाना था पर कैसे जाना था, विपरीत जाना था, ख्याल है ना? तो ये उसको कहते हैं संपूर्ण विवक्षित पदार्थ को जानने वाला, यानी वो सामान्य उसके अर्थ समझता है, कोई आएगा तो इतनी तो बुद्धि है ना, ये द्रव्य गुण है पर्याय, मगर वो जो कुछ चर्चा चलनी है, जो कुछ निमित्त उपादान, जो कुछ शब्द तो उसको मालूम है परंतु उसका जो सही अर्थ प्रतिभासित होना चाहिए वो उसको नहीं होता है। सामान्य से तो उसने सुन लिया, सामान्य से तो पढ़ लिया और मान भी लेता कि मैं सब कुछ जानकार हूँ, परंतु उसका जो विशेष अर्थ सही अर्थ है वो उसके ख्याल में नहीं आता, तो विशेष भाव नहीं समझता, तो उसके संशय और विपर्य दोनों ही बातें रह जाती है, उसका ज्ञान कैसे, वो भी मिथ्या ज्ञान रह जाता है, उसको संशय भी है और विपर्य भी है। देखो यहाँ यहीं से पढ़ेंगे हम, नीचे से तीसरी लाइन ना, इनमें से पहला श्रोता अव्युत्पन्न होने के कारण विवक्षित पद के अर्थ को कुछ भी नहीं समझता, पद यानी कोई वाक्य है, कोई वाक्य सुनता है भी शास्त्र सुनते समय तो उसका उसको अर्थ कोई समझ में नहीं आता। दूसरा, यहाँ पर इस पद का कौन सा अर्थ अधिकृत है, इस प्रकार विवक्षित पद के अर्थ में संदेह करता है, यानी जो दूसरा श्रोता है वो वाक्य सुनता है, वाक्य पढ़ता है और उसमें वो सोचता है अरे ये यहाँ कैसे ऐसा ये शब्द आया हा? आप में परसों आपने बात की थी ना वो दुख निकंदन वाला, अरे आत्मा का है तो आत्मा में तो सुख होना चाहिए, दुख निकंदन क्योंकि निकंदन शब्द का अर्थ मालूम नहीं है ना, तो वो कन्फ्यूजन हो रहा है। तो अर्थ तो कुछ ग्रहण होता है परंतु फिर भी उसमें शंका यानी संदेह रहता है, संशय रह जाता है। तो विवक्षित पद के अर्थ में संदेह करता है अथवा प्रकरण प्राप्त अर्थ को छोड़कर और दूसरे अर्थ को ग्रहण करके विपरीत समझता है। पढ़ तो लेता है क्योंकि पढ़ा हुआ है, शब्द भी पढ़ेगा। जैसे मेरे पास आए थे कॉलेज की लड़की आई, बाहर बोर्ड पढ़कर अंदर आई डिस्पेंसरी में मेरे क्लिनिक में। हाँ हाँ, तो बोला आप तो बालों के स्पेशलिस्ट हैं, हेयर के स्पेशलिस्ट हैं, हम आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। ने बोला आपको किसने गाइड किया, मेरे पास किसने भेजा आपको हेयर स्पेशलिस्ट करके, क्या भेजने की क्या जरूरत, बार आपने इतने स्पष्ट अक्षरों में लिखा है, क्या लिखा है, बाल रोग तज्ञ ये घटित हुई बात है। तो बाल यानी बालक यानी चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट ऐसा लिखा है, यानी शब्द एक होते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो अपने मन से कुछ भी अर्थ वो लगा लेता है और उसमें विपरीत अर्थ निकालता है, ख्याल है ना। तो दूसरे अर्थ को ग्रहण करके विपरीत समझता है, यानी ये दूसरे प्रकार का श्रोता है, उसको संशय और विपर्यय दोनों है। दूसरी जाति के श्रोता के समान तीसरी जाति का श्रोता भी, यानी जिसने एक देश समझा, कुछ समझा, पहले ने तो संपूर्ण वाक्य का अर्थ लगाया था अपन अपनी बुद्धि से लगाया था, इसने वाक्य के थोड़े भाग का ही वाक्य अर्थ लगाया एक देश को, वो भी प्रकृत पद के अर्थ में। प्रकृत यानी द मैटर अंडर कंसिडरेशन, प्रकृत यानी विवक्षित, जो हम जिस विषय को जान रहे हैं वो प्रकृत, कहते हैं सांप्रत या प्रकृत, अंडर कंसिडरेशन, तो उसके अर्थ में या तो संदेह करता है या विपरीत निश्चय कर लेता है, यानी वो अन्यथा ही उसको मान लेता है। इनमें से यदि अव्युत्पन्न श्रोता पर्याय का अर्थी अर्थात पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा वस्तु की किसी विवक्षित पर्याय को जानना चाहता है, तो उस अव्युत्पन्न श्रोता को प्रकृत विषय की व्युत्पत्ति के द्वारा, प्रकृत यानी विवक्षित, अभी हमने देखा ना द मैटर अंडर कंसिडरेशन, तो प्रकृत विषय की यानी विवक्षित विषय की व्युत्पत्ति के द्वारा अप्रकृत विषय के निराकरण करने के लिए, क्या कहते हैं, हम किसी विवक्षित पदार्थ को विवक्षित विषय को जानना चाहते हैं तो उसको अर्थ लगाते हैं, तभी वो अप्रकृत जो विषय, अन्य जो विषय है, जो नॉट अंडर कंसिडरेशन ऐसा जो विषय है उसको हमको निराकरण करना चाहिए, है ना। तो उसको दोनों को जानना आवश्यक है। जब हमको सोना खरीदना है तो सोने जैसा जो सोना नहीं है परंतु सोने के साथ जिसकी मिलावट हो सकती है, जिसका मिस्टेक हो सकती है, ऐसे जो पित्तल है उसका भी स्वरूप जानना चाहिए, हीरे के साथ जो अभी कोई खोटा जो कुछ है उसका भी ज्ञान आवश्यक है। हमको देसी घी शुद्ध लेना है तो उसमें कौन कौन सी भेसल मिलावट हो सकती है उसका भी ज्ञान आवश्यक है, वो प्रकृत और अप्रकृत, यथार्थ और अयथार्थ, प्रकृत अप्रकृत का अर्थ। दूसरा क्या कहते हैं कि अप्रकृत के विषय के निराकरण के लिए निक्षेप का कथन करना चाहिए, यानी वो पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा कुछ जानना चाहता है, पर्यायों की बात जानना चाहता है, तो उसको भी निक्षेप का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि निक्षेप में हमने देखा था ना वर्तमान पर्याय वाला लिया, वो पर्यायार्थिक नहीं का विषय हो गया। और यदि वह अव्युत्पन्न श्रोता द्रव्यार्थिक, द्रव्यार्थिक यानी द्रव्य को चाहने वाला, यानी द्रव्य को समझना चाहता है ऐसा होगा, अर्थात सामान्य रूप से किसी वस्तु का स्वरूप जानना चाहता है, तो भी निक्षेपों के द्वारा प्रकृत पदार्थ के प्ररूपण करने के लिए संपूर्ण निक्षेप कहे जाते हैं। हमने देखा था ना वहाँ द्रव्यार्थिक नहीं को जानना चाहता है, वहाँ द्रव्य निक्षेप है, अन्य अन्य निक्षेप है वहाँ, और वर्तमान पर्याय को जानना चाहते तो भाव निक्षेप है, तो सभी निक्षेपों को जानना आवश्यक है। निक्षेप क्यों समझाते हैं इसकी चर्चा चल रही है। अनभिज्ञ जीवों को या थोड़ा जानने वाले परंतु संशय और विपरीत जिनका ज्ञान है, ऐसे जीवों को ऐसे श्रोताओं को समझाने के लिए निक्षेपों का कथन करना अति आवश्यक है, क्योंकि व्यतिरेक धर्म के निर्णय के बिना विधि का निर्णय नहीं हो सकता। यानी क्या? विशेष के निर्णय के बिना सामान्य का निर्णय नहीं होगा। हमको भारत एक अखंड है कैसा है तो उसके विशेष यानी भेद को भी जानना चाहिए। हमको जीव द्रव्य जानना है तो मैं जीव शुद्ध बुद्ध त्रिकाल ज्ञाता दृष्टा सर्वथा शुद्ध हूँ ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। वो जीव में पर्याय कैसी होती है, उसमें विभाव स्वभाव कैसा होता है, उसमें संयोग रूप क्या क्या है, ये सभी बातें जानना उतना ही आवश्यक है, ख्याल है ना। नहीं तो ये जो अन्य मति जो है वैष्णव में विशेषता वो मनन वगैरह लेते क्लास, तो जैसे हमारा शुद्ध नय का जो स्वरूप बताते ना, आत्मा त्रिकाल शुद्ध है अबद्ध स्पृष्ट है ऐसी बातें, वो तो सर्वथा ऐसा ही कहते हैं। यानी उसका जो कुछ अन्य पर्याय वगैरह का स्वरूप उसकी कोई कुछ है ही नहीं है, जगत परद्रव्य कुछ है ही नहीं, बस सब माया 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 है, बस आत्मा एक ब्रह्म है और वो शुद्ध है। अरे शुद्ध है तो ये सारा क्यों फिर ये प्रयत्न क्यों फिर मोक्ष मार्ग के, मोक्ष मार्ग का और मोक्ष का ये जो हम उसमें आरूढ़ होने की कोशिश करते हैं उसकी जरूरत क्या है, आत्मा शुद्ध ही है तो हम किस अपेक्षा शुद्ध कहते हैं जैनी। वो तो त्रिकाली सामान्य अपेक्षा सामान्य को शुद्ध कहते हैं, परंतु उसके विशेष जाने बिना सामान्य का स्वरूप ख्याल में नहीं आता है। तो व्यतिरेक धर्म के निर्णय बिना विधि का निर्णय नहीं हो सकता, तो वो उसकी विधि यानी उसकी द्रव्य की अस्थि हमको सिद्ध करनी है तो उसके विशेष धर्मों को भी जानना पड़ेगा। दूसरी और तीसरी जाति के श्रोताओं को यदि संदेह हो, ये पहले जाति की बात की, दूसरे तीसरे वाले जो है उनको उनके संदेह को दूर करने के लिए संपूर्ण निक्षेपों का कथन किया जाता है, और यदि उन्हें विपरीत ज्ञान हुआ हो तो प्रकृत अर्थात विवक्षित वस्तु के निर्णय के लिए संपूर्ण निक्षेपों का कथन किया जाता है। कहा भी है ये ऊपर जो कहा भी है ना, पंद्रहवीं गाथा, अवगय निवारणम पयदस परुवणा निमित्तम च संशय विनाशनम तच्चत्थवधारणम च। नीचे उसका अर्थ देखा है, अप्रकृत विषय के निवारण के लिए यानी अयथार्थ का निवारण करने के लिए, क्योंकि श्रोता अभी हमने देखे थे किसी को अनध्यवसाय है, संशय है और विपरीतता है, यानी ये सारे मिथ्या ज्ञान के लक्षण हैं। मिथ्या ज्ञान किसको कहना, तो जिसमें अनध्यवसाय है, संशय है और विपरीतता है उसको मिथ्या ज्ञान के। अनध्यवसाय में क्या है कि कुछ पता नहीं, ऐसा जाना परंतु क्या है वो उसका निर्णय नहीं। संशय ने अरे ये सच्चा है क्या वो सच्चा है, दो विरुद्ध कोटि में उसका वो आंदोलन चलता है। और विपरीत है ने हाँ पक्का निर्णय है बिल्कुल हिलेगा नहीं, बन कैसा उल्टा। तो अप्रकृत यानी अयथार्थ के निवारण के लिए और प्रकृत विषय के प्ररूपण के लिए यानी यथार्थ के प्ररूपण के लिए, प्रकृत यानी खाली अंडर कंसिडरेशन इतना ही नहीं लेना, अयथार्थ का निवारण और यथार्थ का प्ररूपण, निक्षेप क्यों जानने चाहिए, ये चार बातें उन्होंने बताई महत्वपूर्ण है। आप साइड में कुछ उसमें अंडरलाइन या कुछ निशानी लगाने तो लगाओ, क्या कहते हैं चार बातें बताई, अयथार्थ के निवारण करने के लिए यानी अप्रकृत विषय के निवारण करने के लिए, दूसरा प्रकृत विषय के यानी यथार्थ के प्ररूपण करने के लिए, तीसरा संशय का विनाश करने के लिए, और चौथा तत्वार्थ का निश्चय करने के लिए निक्षेपों का कथन करना चाहिए। ये निक्षेपों का कथन क्यों करना, क्यों समझना आवश्यक है ये बातें बताएं, क्योंकि हमको यथार्थ समझना है, संशय का निवारण करना है और तत्वार्थ को निर्णय करना है, तत्वार्थ के निर्णय के प्रति पहुंचना है, उसके लिए निक्षेपों के द्वारा वस्तु को जानना आवश्यक है। तो निक्षेपों द्वारा वस्तु को जानने तो निक्षेप क्या है, इसलिए यहाँ निक्षेपों का कथन किया। अथवा संभव है कि निक्षेपों को छोड़कर वर्णन किया गया सिद्धांत वक्ता और श्रोता दोनों को कुमार्ग में ले जावे। क्या बात, भटक सकते हैं ना, कि शास्त्र की कोई दो लाइन ली और उस पर बातें चलती रही, तो ना निक्षेपों का ठिकाना ना नयों का ठिकाना, वो तो सुनने में तो अच्छी लगती है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं हमको, प्रत्येक धर्म में कुछ 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 ऐसे लोगों को जो सुहाता है, वो बातें अच्छी ऐसी नहीं, समाज में जिसको लोग इजीली अच्छा समझते हैं, ऐसी बातों को ग्रहण करके उसका उपदेश देंगे। और वो सभी धर्मों में देखो, ये मुसलमानों में वहाँ भी जाके मस्जिद में भी व्याख्यान करते, इधर भी जाते, हमको ऐसे मिले थे गुजरात में, नहीं कहाँ मिले थे, वर्धा में मिले थे, ऐसे कोई सत्य पंथ उन्होंने स्थापित किया था। और फिर जैनियों के बारे में वो बहुत भ्रम चलता था उनका, महावीर के संबंध में भी कितनी खोटी बातें बताते, ऐसा चलता है। समाज में लोकप्रिय होने के लिए सच्ची बातें बताने की कोई जरूरत नहीं है। और वो कहते भी समाज को अच्छा लगे ऐसा बोलो, क्या बोलो, ये वक्ता और श्रोता दोनों को कुमार्ग में ले जाते, ये ऐसी बात। इसलिए भी निक्षेपों का कथन करना चाहिए। अश्विन भाई को कुछ मालूम नहीं है, हम तो समाज में कहां कहां जाते हैं और हमें ऐसे उपदेश के डोज पिलाने वाले मिलते हैं, क्योंकि वक्ता होता है ना, तो जहाँ जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद वहाँ के बोले आप ऐसा बताना, है ना, हम क्या बोले उसका उपदेश हमको पीछे से बहुत, हम एक घंटा बोलेंगे तो दिन भर वो हम क्या बोलना चाहिए ये हमको तो डोज पिलाते। तो समाज को अच्छा लगे ऐसा थोड़ा बोलो, ऐसा भी कहते हैं, ऐसा भी मिलते हमको कहीं कहीं। हाँ, क्या करने वाले, गाइडेंस अपवा वाला, हाँ ऐसे मिलते हैं ना, क्योंकि करुणा करते ना हमारे ऊपर। मगर जिनेंद्र भगवान क्या बताना चाहते वो नहीं कोई सुनना चाहते, अपने मन के अनुसार सुनना चाहते हैं और वो हमारे मुख से बुलवाना चाहते हैं। ऐसे चलता है समाज में, सभी बातें चलती, तो इसलिए वक्ता और श्रोता दोनों ही कुमार्ग में न चले जावे, इसलिए निक्षेपों का कथन आवश्यक है। अब हमने ये मंगल आदि जो छह बातें हैं उनके छह छह प्रकार का निरूपण करने की घोषणा पहले की थी। पहले में पहले धातु बताया, फिर निक्षेप, फिर नय, अभी चौथा जो है पॉइंट वो है एकार्थ, यानी समान अर्थ वाले अन्य शब्द, उसको एकार्थ कहते हैं। अब मंगल के एकार्थवाचक नाम कहते हैं, यानी मंगल अन्य की, ये मंगल जैसा अन्य कौन सा शब्द है मंगल के अर्थ में, तो मंगल, पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, शुभ, कल्याण, भद्र और सौख्य इत्यादि मंगल के पर्यायवाची नाम हैं। तो यहाँ शंका पूछते हैं कि यहाँ पर मंगल के एकार्थवाचक अनेक नामों का प्ररूपण किस लिए किया गया है, उसका समाधान, क्योंकि मंगल रूप अर्थ अनेक शब्दों का वाच्य है, अर्थात अनेक पर्यायवाची नामों के द्वारा मंगल रूप अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है। मंगल रूप जो पदार्थ है उसका अन्य अन्य नामों से भी उसको हम इंगित कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। इसलिए प्राचीन आचार्यों ने अनेक शास्त्रों में अनेक अर्थात भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा मंगल रूप अर्थ का कथन किया है। हम कहते हैं शिव स्वरूप शिवकार, ये शिव शब्द आया वहाँ चढ़ाला में, मंगल है ना, उसका मति भ्रम के बिना शिष्यों को सरलता पूर्वक ज्ञान हो जावे, इसलिए यहाँ पर मंगल के एकार्थवाची नाम कहे गए हैं। मति भ्रम यानी कन्फ्यूजन किसी को हो सकता है, यहाँ तो मंगल शब्द है वहाँ तो कोई अन्य शब्द आता है और दूसरे ग्रंथ में कोई अन्य शब्द है, तो ऐसे किसी को कन्फ्यूजन न होए इसलिए वे सभी शब्द मंगल के अर्थ में ही है, मंगल पदार्थ को बताने वाले ही है, इसलिए यहाँ एकार्थवाची अन्य शब्दों का भी उल्लेख कराते हैं, उनको ज्ञान कराते हैं। अथवा यदि शिष्य एक शब्द से प्रकृत विषय को नहीं समझ पावे तो दूसरे शब्दों के द्वारा उसे ज्ञान करा देना चाहिए, उसी अर्थ का दूसरा शब्द हम यूज करते हैं तो उसको ज्ञान में आता है। इस वचन के अनुसार भी यहाँ पर मंगल रूप अर्थ के पर्यायवाची अनेक नाम कहे गए हैं। अब निरुक्ति अर्थ, ये तो एकार्थवाची इसमें हो गया, धातु, निक्षेप, नय, एकार्थवाची, और अभी यहाँ निरुक्ति, निरुक्ति यानी वो शब्द कैसा तैयार हुआ उसको कहते हैं निरुक्ति, उसकी शब्द की व्युत्पत्ति कैसी हुई, शब्द तैयार कैसे हुआ उसको बताते हैं। अब मंगल की निरुक्ति यानी व्युत्पत्ति जन्य अर्थ कहते हैं, जो मल का गालन करे, विनाश करे, घात करे, दहन करे, नाश करे, शोधन करे, विध्वंस करे, उसे मंगल कहते हैं। मल को जो नष्ट करता है, अभी मल कैसा है तो आगे कहते हैं, द्रव्यमल और भावमल। देखो नीचे लिखा है द्रव्यमल और भावमल के भेद से वह मल दो प्रकार का है। द्रव्यमल भी दो प्रकार का है, एक बाह्य द्रव्यमल और दूसरा अभ्यंतर द्रव्यमल। इनमें से पसीना, धूलि और मल आदि बाह्य द्रव्यमल है, जो शरीर पर चोटता है ना बाहर से, ये बाह्य द्रव्यमल। और सांद्र और कठिन रूप से, सांद्र यानी घन थिक, सांद्र और कठिन रूप से जीव के प्रदेशों से बंधे हुए प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इन भेदों में विभक्त ऐसे ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के कर्म अभ्यंतर द्रव्यमल है। देखो द्रव्यमल में दो लिए, एक बाह्य द्रव्यमल यानी शरीर के ऊपर जो पसीना, जो धूल वगैरह जो चोटती है उसको बाह्य द्रव्यमल कहे। अंतर वाला कौन सा द्रव्यमल है, अभ्यंतर द्रव्यमल, तो ज्ञानावरणादि आठ कर्म। अज्ञान और अदर्शन आदि परिणामों को भावमल कहते हैं। द्रव्यमल दो, बाह्य यानी शरीर के ऊपर और एक कर्म, वो अभ्यंतर और बाह्य हुआ। और फिर ये भावमल में जीव के परिणामों को लेना, अज्ञान, अदर्शन आदि। ये आगे की बात हम कल देखेंगे ना, इसको पढ़ते हैं फिर कल देंगे। अथवा अर्थ, अभिधान यानी शब्द और प्रत्यय यानी ज्ञान भेद से मल तीन प्रकार का है। अर्थ मल को तो अभी पहले कहे आए हैं, अर्थात जो बाह्य द्रव्यमल, अभ्यंतर द्रव्यमल और भावमल कह गया है उसे ही अर्थमल समझना चाहिए। मल के वाचक शब्दों को अभिधान मल कहते हैं तथा अर्थमल और अभिधान मल से उत्पन्न हुई बुद्धि को प्रत्यय मल यानी ज्ञान मल कहते हैं। जैसे वो ये कल इसको और समझेंगे, शब्द नहीं, अर्थ नहीं, ज्ञान नहीं होता है ना। कोई पदार्थ है उसको अर्थ कहते हैं, शक्कर रखी है तो जो शक्कर वो पदार्थ है उसको हम अर्थ कहेंगे। शक्कर इस शब्द को हम शब्द कहेंगे और उसका जो हमें ज्ञान होता है उसको ज्ञान कहेंगे। अर्थ शक्कर, शब्द शक्कर और ज्ञान शक्कर, वैसे मल में भी वैसा ही लेना। अर्थमल यानी जो एक्चुअल मल है वो अर्थमल, शब्द मल यानी उसको बताने वाले शब्द, और ज्ञान मल यानी वो मल संबंधी ज्ञान होता है उसको ज्ञान मल कहेंगे। ज्ञान का मल नहीं, वो मल का ज्ञान, ख्याल है ना। तो इसको फिर कल समझेंगे इसको इसी विधि से, आगे भी लिखा है ना। अथवा नाम मल, स्थापना मल, द्रव्य मल और भाव मल के भेद से मल चार प्रकार का है। अथवा इसी प्रकार विवक्षा भेद से मल अनेक प्रकार का है। उस मल का जो गालन करे, विनाश करे, ध्वंस करे, उसे मंगल कहते हैं। यानी मम गालयति, अब इसका जो मंगम लाती वाला जो अन्य अर्थ होता है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। ये जो अंत में जो पढ़ा है ना उसको लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। जावा